ओम शांति। आप सभी का माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, वेलकम। आज हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है और प्रसन्नता है कि आज का ये सेशन जिसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं, हमारी सबकी बहुत ही प्रिय शिवानी बहन हमारे बीच है। हम वेलकम करेंगे उनका तालियां बजाकर। और आज का जो विषय है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल है कि असंभव से संभव की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, दर्द से राहत की ओर, ये बदलने वाली जो शक्ति है, इट इज स्पिरिचुअलिटी कॉल ऑफ द टाइम। कि जीवन के अंदर हम सभी जो यहाँ एकत्रित हुए हैं एक नए अनुभव के साथ, और एक नया अनुभव साथ लेकर जाएंगे यहाँ से। और आज का हमारा जो विषय है स्पिरिचुअल मेटामॉर्फोसिस कॉल ऑफ द टाइम, और इसको आप सब के बीच में अपने व्यक्तित्व, आभा, एनर्जी, जिनका स्वयं का जीवन ही आध्यात्मिक शक्ति है, आप सबके बीच में इस विषय को शेयर करने जा रही हैं हमारी बहुत ही प्यारी आदरणीय शिवानी बहन। और क्योंकि ये हमारा पहला सेशन है, आप सभी का और हम शिवानी बहन का चंद शब्दों के साथ स्वागत करते हैं। कयानाथ के सारे रंग, सारे रंगों के फूल, फूलों की सारी खुशबू, खुशबू की सारी खुशी, खुशी के हर लम्हे, और इन लम्हों से भरपूर जिंदगी की दुआ, शिवानी बहन आपके नाम और आप सभी हमारे आमंत्रित डॉक्टर्स के नाम, क्योंकि बहुत सी दुआएं आपको मिलती ही रहती, हर पल ही आप इसका अनुभव करते हैं। तो आइए हम शिवानी बहन से सुनेंगे। आदरणीय शिवानी बहन, इससे पूर्व मैं निवेदन करूंगी हमारी बहनों को कि आप फूलों के द्वारा शिवानी बहन का स्वागत करेंगे और हम सब तालियां बजाकर धन्यवाद।
ओम शांति। किसी भी कार्य की शुरुआत हम 2 मिनट परमात्मा को याद करके करते हैं, और इस 5 दिन में आप देखेंगे कि हर सेशन की शुरुआत भी और हर सेशन का एंड भी 2 मिनट साइलेंस में करेंगे, ताकि 2 मिनट साइलेंस में हम अपने मन में जो ऊपर चल रहे थॉट्स हैं, इधर उधर से कनेक्टेड है, उन सब को वहां से हटाकर परमात्मा के साथ जोड़कर उसको रेडी करते हैं। नॉर्मली कोई भी कार्य करने के लिए हम सब कुछ रेडी करते हैं, लेकिन मन को रेडी नहीं करते हैं। बाहर सब कुछ रेडी करते हैं, और कई बार वो कार्य हम कर रहे हैं, शरीर कर रहा है, मन कुछ और सोचता है। आप में से किस किस को आता है यहां बैठकर कहीं और जाना मन से, है ना? हो जाएगा ना? फिर तो फिर क्या होगा कि हम आपस में शेयर कर रहे होंगे लेकिन आपका मन कुछ और सोच रहा होगा। तो इसलिए कोई भी शुरू करने से पहले 2 मिनट अपने मन से बैठकर मन को बताकर कि ये वाली बात हम बाद में सोचेंगे, अभी 2 मिनट में हमें अपने मन को कहां लेकर आना है, यहां लेकर आना है। और आज विशेष 2 मिनट परमात्मा का शुक्रिया करेंगे कि परमात्मा ने हमें यहां अपने घर पर बुलाया और हम निर्विघ्न यात्रा करके यहां पर पहुंच गए, तो उसका कितना शुक्रिया करेंगे।
Thank you. द्वेष रहे ना राग रहे, ना द्वेष रहे ना राग रहे, हम सबका प्यार पाने आए संसार में, सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले।
समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार।
हाँ सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़
माइंड बॉडी मेडिसिन विशेष हर साल डॉक्टर्स के लिए अगस्त महीने में यहाँ पर होता है। एवरी ईयर एक फिक्स्ड है कि एवरी ईयर अगस्त में, लेकिन साल में एक ही बार। लेकिन इस बार विशेष आप आत्माओं के लिए, आउट ऑफ टर्न, चेंज ऑफ शेड्यूल, परमात्मा ने आपको अपने घर बुलाना था और इसीलिए ये विशेष प्रोग्राम जनवरी मास में हो रहा है। स्पेशल बच्चे होंगे ना, तभी कुछ स्पेशल हो रहा है ना। स्पेशल बच्चों के लिए पेरेंट और टीचर भी आउट ऑफ टर्न जाकर स्पेशल करते हैं कुछ। तो वी ऑल लुक एट यू डेफिनेटली एज समबडी वेरी स्पेशल, जिनके लिए आउट ऑफ टर्न जो कभी नहीं होता वो इस बार हो रहा है कि आपको विशेष परमात्मा के घर निमंत्रण मिला और आप सब भी अपना समय निकालकर उसमें पहुंचे हैं। तो आप बहुत 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 भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली हैं क्योंकि यहां पहुंचे। अब यहां से अपने भाग्य को कहां लेकर जाना है वो चॉइस हमारी अपनी है ना। जैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिली ये भाग्य है, लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आगे कहाँ जाना है वो अपना भाग्य खुद बनाना है। तो आज पहले दिन से ही, पहले सेशन से ही ये डिसाइड करना कि अपना भाग्य किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। क्योंकि हर साल बहुत सारे भाई बहने यहाँ आते हैं, हर एक सेम भाग्य लेकर आता है कि उनको यहाँ आने का चांस मिलता है। हम जो यहाँ आए ये हमारे श्रेष्ठ कर्मों का फल है। सभी नहीं पहुंचते। इनविटेशन कितने लोगों के पास जाता है, किसी के पास कोई कारण बन जाएगा, किसी के पास कोई कारण बन जाएगा। कोई तो इनविटेशन देखते ही सबसे पहले बोलेगा चार दिन पॉसिबल ही नहीं, तो अपने भाग्य को क्या कर दिया, एक थॉट में ही क्या कर दिया, नॉट पॉसिबल फॉर मी। क्यों? क्योंकि मेरी जीवन तो सारा दिन कैसे चलनी है, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, अपने लिए टाइम निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। वो भी एक भाग्य है। आपने कहा चार दिन, I'll take it out, वो भी भाग्य है। तो अब हमने श्रेष्ठ कर्मों का फल, हम यहां पहुंचे हैं। बहुत सारे भाई बहने पहुंचते हैं। इसके बाद आगे क्या करना है, ये हरेक का प्रेजेंट कर्म होगा। कुछ भाई बहनों के लिए ये चार दिन एक बहुत सुंदर अनुभव होता है। वापस जाएंगे तो लोग पूछेंगे कैसा रहा, तो आप कहेंगे अच्छा था। पूछेंगे क्या अच्छा था, कहेंगे बहुत अच्छा था, साफ था, शांति थी, प्योरिटी थी। चार दिन का भाग्य है कि चार दिन कैसा लगा, शांति थी, अच्छा था, सब कुछ, ज्ञान अच्छा था, लोग अच्छे थे, बहुत अच्छा था। और कुछ भाई बहने कुछ ऐसा मैजिक करके जाते हैं जो वापस जाने के बाद ये शांति उनके जीवन का परमानेंट हिस्सा बन जाती है। तो आज वो डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन, चार दिन अच्छा लगा या जीवन ही इसके बाद बदल गया, कौन सा वाला ऑप्शन चूज करना है। कौन सा वाला ऑप्शन है? वन इज फोर डेज नाइस एक्सपीरियंस एंड वन इज एन एक्सपीरियंस विच चेंज्ड माय लाइफ फॉर एवर आफ्टर दैट। पक्का? कौन कौन कहता है सेकेंड वाला? वैसे सीक्रेट ये है कि फर्स्ट वाला इजियर है, सेकेंड वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फर्स्ट वाला बहुत इजी है, आए सुने मौज की, हॉलीडे किया, वापस। सेकेंड वाला मीन्स वी आर रेडी टू टेक अप द चैलेंज। वी आर रेडी टू टेक अप द चैलेंज कि द लाइफ, माई लाइफ कैन नॉट बी द सेम एनी मोर। एंड व्हेन आई गो बैक फ्रॉम हियर, दुनिया वही होगी जो हम पीछे छोड़कर आए थे, लोग वैसे ही होंगे जैसा हम पीछे छोड़कर आए थे, चैलेंजेस भी वही होंगे जो हम पीछे छोड़कर आए थे, लेकिन हम बदल कर जाएंगे। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अटेंशन रखने का है। तो वो आज डिसाइड करना है ताकि उस अनुसार चार दिन बिताने हैं। तो रेडी फॉर द सेकेंड वन? श्योर? आपको मालूम है ना क्या क्या करना पड़ेगा वो सेकेंड वाले ऑप्शन के लिए? मालूम है? इसीलिए आज के फर्स्ट सेशन का टॉपिक ही क्या है, स्पिरिचुअल मेटामॉर्फोसिस। जब हम साइंस में पढ़ते हैं तो मेटामॉर्फोसिस शब्द सुनते ही कौन सा क्रीचर सामने आता है? मेटामॉर्फोसिस शब्द सुनते ही कौन सा चित्र सामने आ जाता है? कौन सा चित्र सामने आता है जो अगली है और मेटामॉर्फोसिस करके बहुत सुंदर बन जाता है? बटरफ्लाई। कैटरपिलर कैसा दिखता है और बटरफ्लाई कैसा दिखता है? परमात्मा आया है हमें कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनाने। अब चार दिन अपना चेहरा रोज शीशे में देखना कि कैटरपिलर कैसा दिखता है और चेंज होते 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 कैटरपिलर क्या बन जाएगा? बटरफ्लाई बन जाएगा। मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है कैटरपिलर का? कैटरपिलर के अंदर ही बटरफ्लाई बनने के सेल्स ऑलरेडी होते हैं, जिसको कहते हैं इमेजिनल सेल। वो बटरफ्लाई कैटरपिलर के बाकी सेल से अलग होते हैं, लेकिन वो उसी के अंदर होते हैं। उस सेल के अंदर वो है जीन जिससे वो बटरफ्लाई बन जाता है, लेकिन उसको वो समय लगता है। एक ऐसा समय आता है जब कैटरपिलर को लगता है कि मैं खत्म, एवरीथिंग इज फिनिश्ड फॉर मी। और जैसे ही द कैटरपिलर फील्स दैट एवरीथिंग इज फिनिश्ड फॉर मी, इट बिकम्स अ बटरफ्लाई। आज अगर हम इस सृष्टि को देखें तो कैटरपिलर खत्म होने पर आ रहा है। कलयुग कैसा लग रहा है? हर चीज थोड़ी सी वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, प्योरिटी, आत्माओं की प्योरिटी खत्म होती आ रही है। रोज सुबह का अगर अखबार उठाएं तो मुख से एक ही शब्द निकलता है, क्या क्या होता जा रहा है रोज, ऐसा भी होता है क्या? लेकिन जब सब कुछ अति को पहुंच जाता है It's also a sign that the caterpillar is finishing, is also a sign that the butterfly is going to get created. तो जब एक एक आत्मा अपना वो परिवर्तन करेगी to become that butterfly, सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा. हम वो आत्माएं हैं सभी जिन्होंने चूज किया है कि हम एक एग्जिस्टिंग तरह से जीवन न जीकर जीवन को एक अलग तरह से जीने के लिए रेडी है. एक मिनट आंख बंद करें, सिर्फ अपने को देखें, चेक करें कि मुझे अगर बटरफ्लाई बनना है, चारों तरफ नहीं देखना, दुनिया में क्या हो रहा है वो भी नहीं, सिर्फ अपने को देखना, मेरे अंदर कौन सी ऐसी आदत, कौन सा ऐसा संस्कार, कौन सा ऐसा स्वभाव है जिसको बदलने से मैं बटरफ्लाई बन सकता हूं. I have to select, pinpoint, अपने अंदर कौन सी ऐसी आदतें हैं, क्या मेरे अंदर है जिसको मैं बटरफ्लाई नहीं कैटरपिलर कहना पड़ेगा, कौन सी मेरी ऐसी सोच, मेरा बात करने का तरीका, मेरा व्यवहार, पिन पॉइंट करके अपने लिए सिलेक्ट करना है. जैसे किसी और की बीमारी ढूंढते हैं ना कि क्या बीमारी है, बीमारी पकड़ ली तो इलाज बहुत इजी है, लेकिन बीमारी पकड़नी है, अपनी भी बीमारी पकड़नी है. कौन सा संस्कार है जो मुझे और कई बार मेरे आसपास के लोगों को भी तकलीफ देता है. परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सामने वाले का व्यवहार चाहे कैसा भी हो, मेरा वो कौन सा संस्कार है. ओके, सिलेक्टेड. किस किस को मिली पल्स अपने के कौन सा संस्कार है जिसको चेंज करना है. डॉक्टर वो जो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं चेकिंग करेगा, कहीं दबी हुई कोई बीमारी भी होगी ना, उसको भी ढूंढ के निकालना है. अच्छा, अब पकड़ लिया, अब सेकंड क्वेश्चन अपने आप से, इसको निकालने के लिए रेडी है. थर्ड क्वेश्चन, इसको निकालना संभव है पूरी तरह से, यहां पर नहीं, वापस जाकर इस संस्कार के बिना चलना संभव है. यस, ऐसे तो नहीं, नहीं कभी कभी तो करना ही पड़ता है, कभी कभी तो हो ही जाता है, क्योंकि बीमारी या तो है या तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी नहीं रख सकते अंदर. Either we let it stay or we finish it off. तो you sure कि वापस जाने के बाद इस संस्कार के बिना चल जाएगा. अच्छा, तो फिर शेयर करें कौन सी चीजें निकालनी है बटरफ्लाई बनने के लिए. एनीबडी शेयर शेयर. एंगर, ईगो और इरिटेशन. अच्छा, और मोह माया. मोह माया में क्या बोलेंगे, किसको बोलते हैं मोह माया. अटैचमेंट, अटैचमेंट. ओके, और एक्सपेक्टेशन. लिस्ट एक बनाते जाना साथ साथ, फोर्थ डे चेक भी करना है. तो एंगर, इरिटेशन, एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट, ईगो, एनीथिंग एल्स. वरी. हाँ जी. अच्छा, ज्यादा अपनी महिमा करना. ओके, और लेजीनेस. हाँ, फोन रख सकते हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए। और पास्ट का क्या, ज्यादा सोचना पास्ट के बारे में। ओके, एनीथिंग एल्स दिस साइड? यहाँ कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने के लिए कोई चीज हटानी है? हाँ जी, क्रिटिकल, क्रिटिसाइज करना किसी को, हाँ हाँ, बट चेंज इन एटीट्यूड, व्हाट एटीट्यूड? सी, चेंज इन एटीट्यूड इज वेरी लेजिटिव। व्हाट इन एटीट्यूड? एटीट्यूड बहुत अच्छा भी हो सकता है। व्हाट डू आई हैव टू चेंज इन द एटीट्यूड? बिलीविंग मोर इन गॉड। व्हाई शुड आई बिलीव इन गॉड? कैन चेंज मी। इम्पोर्टेंट इज व्हाट डू आई वॉन्ट टू चेंज इन मी। समय निकालना होता है अपनी चेकिंग करने के लिए। बहुत ईजी है बोलना चेंज इन मी पॉजिटिव, वॉट स्पेसिफिक? इट्स लाइक गोइंग एंड सेइंग टू द डॉक्टर आई वॉन्ट टू बी हेल्दी। वह डॉक्टर बोलेगा प्रॉब्लम क्या है? नहीं डॉक्टर साहब, बस आई वॉन्ट टू बी हेल्दी। तो वो बोलेगा बीमारी कहाँ है, क्या दर्द हो रहा है, क्या तकलीफ हो रही है? पिन पॉइंट अपना क्या करना है, चेकिंग करनी है। तो ईगो, एंगर, इरिटेशन, क्रिटिसिज्म, टू मच अप्रिसिएशन, अटैचमेंट, वरी, थिंकिंग अबाउट द पास्ट, एनीथिंग एल्स? अजम्पशंस बनाना, ओके, अनुमान लगाना। आई वॉन्ट टू ओवरकम बॉडी कॉन्शियसनेस, तो वो ईगो। एनीथिंग एल्स? फॉरगिव करना, क्षमा करना लोगों को। और जजमेंटल होना दूसरों के बारे में, ये ऐसा क्यों बैठे हैं, ये ऐसा क्यों बैठे हैं, ऐसा क्यों खड़े हैं, ऐसा क्यों पहनते हैं? ये बीमारी है किसी के अंदर? अच्छा, और एनीथिंग एल्स? ब्रूडिंग, ऐसे ही दुखी रहना, मौसम ही अच्छा नहीं है आज, बताओ कैसे जीवन है ना? अब यहां पहुंच गए, बस ही नहीं आ रही हॉल तक जाने में, ऐसे ही हर चीज में कुछ न कुछ दुखी होने का कारण ढूंढ लेना। और जेलसी, यस, ईर्षा, हम में से है किसी को? हम में से किसी को होती है कभी कभी? किसी को नहीं? अच्छा, चार दिन का एक रूल, कोई भी बात के लिए ये आंसर नहीं देना सभी को, हमें सिर्फ चेक करना है। इट्स लाइक डॉक्टर आपको पूछे बुखार है तो आप बोलो सभी को है, बोला आपको है या नहीं है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सभी को है का क्या मीनिंग है? हम सभी को क्यों कहते हैं? गुस्सा आता है, सभी को आता है। टेंशन होती है, सभी को होती है। ईर्ष्या होती है, सभी को होती है। अब सभी को होने से क्या बोल हो जाता है फिर? When we answer अपने आप को कि सभी को होता है, तो उससे क्या हो जाता है फिर? Very good, सभी को जो चीज है तो वो चीज तो फिर, and most important, फिर मैं ठीक हूं क्योंकि सभी को है। और अगर सभी को है तो फिर तो उसको बदलने की जरूरत ही नहीं। तो हर चीज के लिए सिर्फ चेक करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी का नहीं। एंड दूसरा, डेफिनेटली घर पे लोग जो हैं या जिनके साथ काम करते हैं उनके बारे में नहीं सोचना यहां बैठकर। कई बार जब हम कुछ ज्ञान की बातें सुनते हैं तो हम सोचते हैं वो सुन लेते और बदल जाते अगर आज, है ना? अगर मेरी वाइफ आई होती और ये वाली बात आज सुन लेती और उसको समझ में आ जाता तो बताओ मुझे तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है वो किस लिए? क्योंकि वो ऐसा करती है ना। तो जब हम शब्द सुनेंगे क्रिटिकल, तो हमें वो लोग नहीं याद करने जो क्रिटिसाइज करते हैं, हमें ये चेक करना है क्या मैं ये करता हूं। फिर हम शब्द सुनेंगे जजमेंटल, तो हमें कोई याद आ जाएगा, क्योंकि हम ज्यादातर चेकिंग अपनी कम औरों की ज्यादा करते हैं, क्योंकि सारा दिन हमारा जो एंटीना है वो दूसरों की फ्रीक्वेंसीज को ही कैच कर रहा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, अपने बारे में नहीं जानते हैं। एक बार एक रिट्रीट सेंटर में दिल्ली में एक छोटा सा ऐसे ग्रुप आया था, तो आइस ब्रेकिंग के लिए उनको एक एक्सरसाइज दी कि एक पेपर पे अपनी पांच विशेषताएं और पांच कमजोरियां लिखनी है, फाइव क्वालिटीज, फाइव वीकनेसेस अपनी। बैठ गए पेपर पेन के साथ, पहले सोचा, फिर साथ वाले को पूछा, क्या लगता है मेरे अंदर, विशेषता भी साथ वाले को पूछते, क्या लगता है मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है। तो बहुत टाइम लगा पांच क्वालिटीज और पांच वीकनेसेस लिखने के लिए। फिर वो पेपर लिया, दूसरा पेपर दिया कि आपके साथ जो बैठा है उनकी पांच क्वालिटीज, पांच वीकनेसेस। डू यू फील दैट इज द केस? यस। व्हाई? क्योंकि यहां पर दूसरों की क्वालिटीज और वीकनेसेस ज्यादा इजीली है, क्योंकि सारा दिन ध्यान उस पर है, अपने बारे में कभी सोचा नहीं, इसलिए हर चीज अपने आप से अप्लाई। अगर हमारी कोई क्वालिटी है और हम अवेयर ही नहीं होंगे तो हम उसको यूज कैसे करेंगे और उसको बढ़ाएंगे कैसे? तो दूसरों के बारे में चार दिन सोचना, चार दिन सोचना नॉट अलाउड। और कोई भी चीज अगर चार पांच दिन प्रैक्टिस कर ली, व्हाई थिंकिंग अबाउट अदर पीपल is not healthy for us. Why should I not be thinking too much about other people? Thinking for what I have to do about other people is good, but just sitting and thinking about other people. Suppose main yahan se baithu aur inke bare mein sochna shuru karu. Ye aise kapde kyun pehne? Ye aise kyun baithe? Ye aage kyun baithe? Udhar kyun nahi baithe? Ek ek thought, what is it doing to me? What is it doing? इनको ऐसे नहीं, इनको ऐसे करना चाहिए था, थोड़ा सा ऐसे कर लेते तो कितना बेटर हो जाता। हम में से कोई करता है थॉट्स ऐसे सारा दिन? हम में से कोई करता है? सभी नहीं। हम में से कोई करता है? सभी नहीं, सभी नहीं। मैं करती हूं इज द आंसर। सभी नहीं, अपने लिए आंसर। नाउ एक एक थॉट, ये एक एक थॉट जिसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, दिस इज गोइंग वेस्ट। इट्स लाइक अपना वॉलेट निकाला और 100-100 रुपए ऐसे फेंकते गए, जस्ट लुकिंग एट अदर पीपल। एनर्जी, माई रिसोर्सेस किस चीज के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं? एंड हमें लगा नॉर्मल है ऐसा सोचना, तो क्योंकि बचपन से हमें ये सिखाया गया क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे सोचना है, नोबडी शेयर्ड विद अस। तो हमें पता ही नहीं है कि हमारी कितनी सारी थॉट्स ऐसे ही वेस्ट, टिप 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 चलता ही जा रहा है। अगर आपके घर में कोई नल का टिप 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 ऐसे ही चलता जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसे तो नहीं वेस्ट होने देंगे। लाइट ऐसे ही ऑन है, बंद करेंगे? यहां ऑन कंटिन्यूस टिप 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 चलता जा रहा है। अगर हम दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दें, हमारी बहुत सारी शक्ति बच जाएगी। चार दिन का होमवर्क, फर्स्ट होमवर्क, सारा दिन में दूसरों के साथ रहना, इंटरैक्ट करना, लेकिन जहां जरूरी नहीं वहां दूसरों के बारे में यहां सोचना नहीं। दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं वो सोचना, लेकिन सिर्फ अननेसेसरीली मीटर चलता जा रहा है। इट्स लाइक गाड़ी खड़ी है, एक्सेलरेटर दबाए जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक भी साथ में, आगे नहीं जाएगी पीछे नहीं जाएगी, लेकिन फ्यूल क्या होता जाएगा? वेस्ट, वेस्ट। फर्स्ट होमवर्क, ना लोगों के बारे में सोचेंगे। दूसरी प्रैक्टिस, जो बीत गया मोमेंट, क्यों पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्यों पास्ट के बारे में नहीं सोचना? We can't change it. तो सोचने में क्या है? We can't change it, but सोचने में क्या है? What will happen? सोचने से क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं चेंज कर सकते मुझे पता है, लेकिन याद आ गई तो हम सोच रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन? कुछ अच्छा सोच रहे हैं जो अच्छा हुआ था, अच्छा भी सोच सकते हैं। कई बार लोगों के साथ बैठो कहेंगे जी वो वाले दिन कितने अच्छे थे, तो वो अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं वो वाले दिन कितने अच्छे थे, उसका सेकंड भाव क्या है, फिर आज तो उतना अच्छा नहीं है। तो पास्ट को जब हम याद करेंगे, वेदर इट इज एन अनप्लेजेंट मेमोरी और वेदर इट इज अ ब्यूटिफुल मेमोरी विद द फीलिंग कि वो ज्यादा अच्छा था, माई टूडे इज नॉट हैप्पी। पास्ट से लर्न किया, मूव ऑन किया, अब माइंड को पुरानी आदत है पास्ट की तरफ जाने की, तो वो जैसे ही जाएगी हमें उसको फिर क्या कहना है, अपने मन को एक बच्चे की तरह ट्रीट करना है। वो दिन याद करो जब आपका बच्चा एकदम छोटा था और आपने उसको एक एक चीज सिखाई है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कहाँ हाथ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कैसे खड़े होना है, उस प्रोसेस में उसने कितनी गलतियां कर रहा था वो, लेकिन आप हर स्टेप पे क्या कर रहे थे। सपोज आपका बच्चा मिट्टी उठा के खाने लगे तो तुरंत क्या करेंगे, उठाया मिट्टी उठाया खाने लगा, जमीन से कुछ उठाया खाने लगा, बच्चे उठाते, आपके बच्चों ने उठाया था हाँ, तो तुरंत क्या किया था, स्टॉप किया, फिर उसने फिर उठाया, फिर क्या किया, स्टॉप किया, फिर उसने फिर उठाया, फिर क्या किया, किसी स्टेप पे आपने कहा छोड़ो ना सुंदर ये खाने दो, नहीं, स्टॉप 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 करते 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 उसने स्टॉप कर दिया। ये भी ऐसा ही है, ये एक बार पास्ट के बारे में सोचने जाएगा तो इसको क्या बोलना, नहीं ना, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम, ये फिर से धीरे से खिसक जाएगा उधर वापस। पर उसको क्या बोलना, बोला था ना आपको वेस्ट ऑफ टाइम नहीं जाना, फिर बोलेगा अच्छा अच्छा, फिर दो मिनट आप यहां बैठेंगे ना ये फिर खिसक जाएगा, लेकिन हम गिव अप नहीं करेंगे इसको, क्योंकि बहुत समय से हमने इसको सिखाया नहीं कि क्या सोचना है क्या नहीं सोचना। कोई बच्चे को अगर सिखाया ही ना हो तो वो बच्चा आज भी कैसा होगा, वो आज भी मिट्टी उठा के खाएगा, क्योंकि उसको पेरेंट्स ने सिखाया ही नहीं, तो सामने वाले क्या कहेंगे, मम्मी पापा ने कुछ नहीं सिखाया, तो गलती किसकी, मम्मी पापा की गलती। तो मन अगर आज सही रास्ते नहीं चल रहा तो गलती किसकी, हमने उसको सिखाया नहीं, कोई बात नहीं आज सिखाएंगे। तो जैसे ही मन कुछ ऐसा सोचने लगे विच वी अंडरस्टैंड नाउ इज नॉट हेल्दी फॉर मी, क्योंकि मेरी एनर्जी क्या हो रही है, तो तुरंत उसको समझाकर वापस यहां लेकर आना है, एंड नॉट टू एक्सपेक्ट कि पहली बार समझाने से ही वो हो जाएगा, एक बार दो बार पांच बार दस बार धीरे धीरे वो सीख जाएगा, दिस इज राइट फॉर मी दिस इज Not right for me, लेकिन सिखाया नहीं तो वो जीवन भर वैसा ही चलेगा। तो हमारा मन एक बच्चा है, सारा काम करते हुए चारों तरफ सब कुछ करते हुए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका ध्यान रखना। जैसे घर में क्रेडल में एक बच्चा है और माँ को घर का सारा काम करना है, तो क्या वो मां दोनों चीजें कर सकती है कि बच्चे का भी ध्यान रखे और घर का भी काम करे, कर सकती है, किचन में भी जाना है खाना भी बनाना है लेकिन बच्चे पे भी नजर रखनी है, कर सकती है उस सारे काम में कि किचन का भी काम, फोन भी बजा, कोई आया भी, सब कुछ भी हुआ और बच्चा भी, फर्स्ट प्रायोरिटी कौन बच्चा, विच मीन्स सब कुछ करते हुए अगर बच्चा थोड़ा सा यहां से रोया तो व्हाट इज द मदर गोइंग टू डू वो वहां से विड्रॉ करेगी, आधा मिनट यहां जाएगी, उसको क्या करेगी, प्यार से थपथपाएगी, वापस काम पर आएगी। अगर उसने वो आधा मिनट निकालकर बच्चे को नहीं थपथपाया तो बच्चे का रोना क्या हो जाएगा? ये बच्चा कई दिनों से अंदर रो रहा है, लेकिन हमने क्या कहा? आई एम वेरी बिजी। आजकल ये हमारा स्टेटस सिंबल है कि हम कितने बिजी हैं। अगर हम बिजी नहीं तो फिर हम तो सफल ही नहीं कि हम बिजी नहीं है। आप में से कौन कौन बिजी? आप में से कौन कौन बिजी? आई एम बिजी इज नॉट अ हेल्दी लाइन टू से टू योरसेल्फ, क्योंकि जैसे एक एक थॉट का प्रभाव होता है। जैसे ही हमने कहा आई एम बिजी तो मैंने अपने मन और शरीर को क्या मैसेज दिया? टाइम नहीं है मेरे पास। एक है, कुछ लोग होते हैं बिना कुछ करे भी बहुत बिजी होते हैं। ऐसे लोग मिले कभी? कुछ ज्यादा कर नहीं रहे लेकिन दिखेंगे ऐसे जैसे बहुत बिजी है सारा दिन। और कुछ लोग होते हैं बहुत कुछ करते हुए भी इजी है। तो बिजी इज एन एटीट्यूड, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच वर्क वी आर डूइंग। आई कुड बी डूइंग वेरी लिटिल बट फीलिंग वेरी बिजी, एंड आई कुड बी डूइंग अ लॉट बट फीलिंग वेरी इजी। आप में से कौन कौन बिजी है? ये थॉट को भी हमें क्या करना है? क्योंकि बिजी मतलब माइंड टर्बुलेंट, इजी मतलब माइंड बिजी, एंड इजी इज हियर नॉट हियर, इट्स नॉट हियर इट्स हियर। कि मेरा मन कितना रिलैक्स्ड है, शांत है, पीसफुल है, एट ईज है। एंड बिजी मतलब ये पूरा टाइम कैसा है? हलचल में है। तो सब कुछ करते हुए हमारा एक ध्यान किसकी तरफ होना चाहिए था? इस बच्चे की तरफ। ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी करना है, पेशेंट भी मिलने हैं, सर्जरी भी करनी है, घर भी जाना है, सोशल वर्क भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन एक नजर किसकी तरफ? अगर ये बच्चा बीच में से थोड़ा सा रोया तो हमें क्या करना था? जस्ट विथड्रॉ और यहां देखना क्या हुआ, क्या तंग कर रहा है। तो ये मन कहेगा उसने आज मेरे से ऐसा कहा, तो उसको बैठ के आंसर देना था। हमने रुक कर इस मन से बात नहीं की, इसको आंसर नहीं दिए। ये पहले थोड़ा रोया तो समाज में टेंशन आई, फिर ये थोड़ा ज्यादा रोया तो समाज ने वर्ड क्रिएट किया स्ट्रेस, फिर आज ये इतना जोर से रो रहा है तो समाज ने एक वर्ड क्रिएट किया डिप्रेशन। दिस इज साइन कि हमारा मन का रोने का वॉल्यूम क्या होता गया। अगर हम टेंशन पर ही जाकर इसको थप थपा देते थोड़ा सा तो ये वहीं चुप हो जाता, लेकिन हमने कहना शुरू किया स्ट्रेस तो नेचुरल है, तो हमने मन के रोने को ही नेचुरल कहना शुरू कर दिया। स्ट्रेस नेचुरल है, स्ट्रेस नेचुरल है, स्ट्रेस नेचुरल है। अभी श्योर नहीं है क्या बोलना है, क्योंकि मन कहता है हाँ नेचुरल है, घर जाके तो होता ही है, फिर यहां आंसर कैसे करे ये वाला ऐसा। स्ट्रेस नेचुरल है। हम में से कौन कौन क्रिएट करता है स्ट्रेस? एंगर नेचुरल है, एंगर नेचुरल है, एंगर नेचुरल है। अच्छा, हाथ उठाएं जो कभी कभी गुस्सा करते हैं, हाथ उठाएं जो दिन में एक बार कर लेते हैं, हाथ उठाएं जो दिन में कई बार कर लेते हैं। बीमारी अच्छी खासी है, क्योंकि विच मीन्स हम दिन में कितनी बार अपनी खुशी को क्या कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को क्या कर रहे हैं, अपने रिश्तों को क्या कर रहे हैं, एंड इन द नेम ऑफ कि एंगर तो नेचुरल है। जो पूरी हीलिंग कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी अगर नेचुरल की परिभाषा को बदल दे तो समाज की डेफिनेशंस चेंज हो जाएंगे। अगर डॉक्टर हमें कहता है स्ट्रेस तो नेचुरल है, तो पेशेंट कहेगा ऑब्वियसली स्ट्रेस तो नेचुरल है. तो डॉक्टर को खुद अपनी डेफिनेशन को चेक करना पड़ेगा कि क्या रियली स्ट्रेस नेचुरल है या ये मेरी एक अननेसेसरी क्रिएशन है. किन वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है, जस्ट चेक नॉर्मल डे टू डे रूटीन में किन वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है. स्ट्रेस क्रिएट होता है तो गुस्सा भी आ जाएगा, इरिटेशन, दे ऑल वन चेन, ये पूरी एक फैमिली है, दो परिवार है. एक परिवार का हेड है अहंकार, ईगो, जहां ईगो है वहां स्ट्रेस है, गुस्सा है, इरिटेशन है, हर्ट है, हेट्रेड है, ये एक फैमिली है. दूसरी फैमिली, दूसरा परिवार कौन है, दूसरा परिवार कौन है, जहां पीस है, लव है, कंपैशन है, केयर है. ये दो परिवार है, इनमें से कुछ कुछ सदस्य नहीं आते हमारे घर. अगर ये आते हैं तो, अगर ये आते हैं तो सारे आते हैं. एंड द ब्यूटिफुल पार्ट है, जाते हैं तो भी सारे जाते हैं, क्योंकि इनकी सबकी यूनिटी आपस में अच्छी है, बिकॉज दे ऑल इंटरकनेक्टेड. जो स्ट्रेस्ड है वो इरिटेट तो हो ही जाएगा. हाँ, दे आर जस्ट अ साइन ऑफ वीकनेस एंड हेल्थ, दैट्स ऑल. इट्स ईदर हेल्थ और इट इज डिजीज. अगर मेरा इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो बहुत सारी बीमारियां इकट्ठी आएंगी. तो मैं आपके पास आई, आपने कहा ये खाओ, ये करो, इतना करो, इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सारी बीमारियां इकट्ठी जाएंगी. तो देयर आर टू फैमिलीज. स्ट्रेस और गुस्सा किस बातों पर आता है, क्यों आता है जनरल, जब दूसरा अपना कहना नहीं मानता, और टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम, और लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करते. अच्छा, और फाइनेंशियल अप एंड डाउन, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एनीथिंग एल्स. स्ट्रेस होता है, गुस्सा आता है क्यों. अच्छा, एक काम करते हैं, फिर से आंख बंद करें, लास्ट सीन सामने लेकर आए जब गुस्सा किया था, पूरा का पूरा सीन सामने लेकर आइए, पूरा सीन माइंड की स्क्रीन पर सामने लेकर आइए जब लास्ट गुस्सा क्रिएट किया था. सीन क्या था, परिस्थिति क्या थी, सामने वाले ने कैसा व्यवहार किया था और हमने कैसे रिएक्ट किया, पूरी सीन को देखें. अब इस सीन को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देखें. सीन सेम, लोगों का व्यवहार सेम, जो बात थी वो सेम. अगर मुझे आज चांस मिले, क्या मेरे पास ऑप्शन है उसी सीन को एक अलग तरह से करने का, एंड अपने आप को वो दूसरी तरह से करते हुए देखें कि वो दूसरा ऑप्शन क्या. Look at yourself responding in a different way. Very clear अपने आप को देखना है कि second option में मन की स्थिति कैसी, बोलने का तरीका कैसा और बात को face करने का तरीका कैसा. ओके, किस किस को दिख गए दोनों सीन दिखे, पहले वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन. हाउ मेनी कुड सी इट क्लियरली, पहले वो हाथ उठाओ, यू कुड सी द सीन वेरी क्लियरली. ओके, सेकंड ऑप्शन किस किस को दिखा कि देयर इज अ सेकंड ऑप्शन पॉसिबल, या वो गुस्से वाला ऑप्शन बेस्ट था, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था. सेकंड ऑप्शन में क्या देखा अपने आप को करते हुए, क्या चेंज देखा अपने अंदर सेकंड ऑप्शन में, एनीबडी. सेकंड ऑप्शन में पता ही नहीं चल रहा था कि गलती क्या है। अच्छा, मतलब गलती थी नहीं कोई, अपनी गलती नहीं, सामने वाले की गलती थी वी आर सेइंग, लेकिन हमारे रिस्पॉन्स में क्या चेंज था। सपोज आपके क्लिनिक में, आपके हॉस्पिटल में किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, राइट? किसी से बहुत 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 बड़ी गलती हो गई है, वो नर्स हो सकती है, वो एडमिन स्टाफ हो सकता है, एनीबडी, इट कुड बी हु हैज मेड अ ब्लंडर, वेरी बिग वन, एंड वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। एंड उस क्षण हमने रिएक्ट कर दिया, तो रिएक्ट किया तो हमारी फीलिंग कैसी थी, बोल कैसे थे, व्यवहार कैसा था। एंड अब जबकि हम उस सीन को रिवाइंड करके फिर देखते हैं यहां आराम से बैठकर, डू वी फील अनदर वे वॉज पॉसिबल या दैट वॉज द वे? अनदर वे वॉज पॉसिबल, राइट? उस टाइम नहीं वो ऑप्शन आया, अभी तो आ रहा है। अभी ये करना एक्सरसाइज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक्सरसाइज करते ही हमने अपने मन को दिखाया कि अनदर वे वॉज पॉसिबल। अब ये अनदर वे जब हमने यहां देखा, ये यहां रिकॉर्ड हो गया और हमने इस मन को कहा कल फिर कोई गलती करेगा। बातें तो रोज आने वाली हैं, कहना लोग नहीं मानेंगे, लोग अपने अनुसार चलेंगे, किसी से गलती भी हो जाएगी, सामने वाला गलती करेगा, लेकिन क्या मेरे को गलत तरह से ही रिएक्ट करना है हर बार? एंड गलत तरीका मतलब वो जिसमें मेरी शक्ति जाती है, मेरी सेहत खराब होती है, मेरे रिश्ते अफेक्ट होते हैं, दैट इज डैमेजिंग फॉर मी। सो नाउ व्हाट डिड वी सी इन द सेकंड ऑप्शन? क्या दिखाई दिया एनीबॉडी? क्या दिखा? व्हाट यू हैव एक्सेप्टेड, तो रिस्पॉन्ड क्या था? एक्सेप्ट किया तो क्या दिखा? फॉरगिवनेस दिखा क्या? व्यवहार में क्या डिफरेंस दिखा? सी, दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन, कि रिफ्लेक्ट करके, जैसे एक एक्टर है, एक एक्टर के पास एक रोल है, एक स्क्रिप्ट है, एक डायलॉग है, तो वो सीधा जाके परफॉर्म नहीं करते, पहले क्या करेंगे, उसका रिहर्सल करेंगे। तो रिहर्सल में वो पूरा देखेंगे ना कि ये सीन होगा, हम कैसे एक्ट करेंगे इसको। ये जो अभी हमने किया ये भी एक रिहर्सल है कि सामने वाला गलती करेगा। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई एक टिपिकल संस्कार होता है जिसको लेकर हम रोज ही एक बार इरिटेट हो जाते हैं। आपके आसपास कोई ऐसा है ना? वो फिर हम कल शाम को देखेंगे क्यों ऐसे हैं वो, अगर वो थोड़े से बदल जाते तो जीवन क्या हो जाती। बट पीपल आर नॉट गोइंग टू चेंज, दे आर कंफर्टेबल द वे दे आर। आई विल हैव टू अडॉप्ट हाउ टू बी विद देम बट नॉट डिप्लीट माई एनर्जी, टप 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 टप, राइट? अब जब वो ऐसा करेंगे, वो गलती करेंगे, वॉट इज माई रिस्पॉन्स? क्या देखा अपने आपको? एक्सेप्ट किया तो रिस्पॉन्स कैसा था? माइंड कैसा था? फेस कैसा था? वर्ड्स कैसे थे? बिहेवियर कैसा था? पूरा देखना है, एनालिसिस। क्या दिखा? पूरा देखना है, मन कैसा था उस अप्रोच में? स्टेबल। पहले वाले ऑप्शन में मन कैसा था, राइट? चेहरा ऑब्वियसली कैसा हो जाएगा, है ना? अच्छा, शब्द भी कैसे निकलेंगे फिर? रफ। कई बार ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं मुख से जो दूसरे को तो बुरा लगता ही लगता है, हमें भी नहीं लगता ठीक कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। होता है ऐसा? या तो वर्ड्स भी गलत निकल गए, तो बॉडी लैंग्वेज भी पूरी क्या हो गई। ये जब हम ऐसे गुस्सा कर देते हैं तो ज्यादा नुकसान किसका होता है, जो गुस्सा करता है या जो डांट खाता है? श्योर आप डॉक्टर हैं तो आप बताइए, गुस्सा करने वाले का क्या क्या नुकसान होता है? हेल्थ वाइज भी अगर देख लें उस टाइम फिजियोलॉजी पर, गुस्सा करने वाले का क्या क्या नुकसान होता है? हार्ट बीट बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, अच्छा, और तो वो लंबा लंबा हो जाएगा वो फिर बहुत सारा, है ना। तो आपको बेस्ट पता है कि गुस्सा करने का हमारे शरीर पर कितना असर है। शरीर पर जो असर पड़ा दैट इज द सेकेंड स्टेज ना, मन का शरीर पर असर पड़ रहा है। एवरी थॉट वी क्रिएट, ये मंत्र है आज पक्का करना है, एवरी थॉट वी क्रिएट, नॉट फ्यू थॉट्स, सम ऑफ द थॉट्स नहीं, एवरी थॉट वी क्रिएट सबसे पहले किस पर असर डालती है। हर थॉट जो हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले किस पर असर डालेगी, सबसे पहले यहां पर असर डालेगी कि हाउ विल आई फील। सपोज हम इस हॉल में एंटर हुए और हमने एक थॉट क्रिएट की, कितना सुंदर हॉल है, जस्ट एक थॉट। तो जैसे हम ये थॉट क्रिएट करेंगे कितना सुंदर हॉल है, वी विल फील नाइस, राइट, दैट्स वन। अगर हम इस हॉल में एंटर किए और हमने एक थॉट क्रिएट की ये कैसा हॉल है, तो फीलिंग चेंज हो जाएगी। एंड विच मीन्स एवरी थॉट आई क्रिएट विल फर्स्ट अफेक्ट हाउ आई फील। सेकेंड, एवरी थॉट आई क्रिएट का किस पर असर पड़ेगा, सेकेंड, पहले यहां असर पड़ा, खुद पर मतलब क्या, पहले यहां असर पड़ा फीलिंग। सेकेंड, एवरी थॉट आई क्रिएट का किस पर असर पड़ेगा, इस शरीर के ऊपर। हमारा शरीर एक भी थॉट के प्रभाव से बच नहीं सकता। आज आपके हॉस्पिटल इतने जो भरे हुए हैं और आप सब इतने जो सक्सेसफुल हैं और आने वाले समय में 100% है कि और ही सक्सेसफुल होने वाले हैं, ये भी सर्टेन है। एक ही इंडस्ट्री है जिसको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए अपने फ्यूचर की, क्योंकि जितना कलयुग बढ़ता जाएगा उतना लोगों की सोच क्या होती जाएगी और नेगेटिव होती जाएगी, उतनी बीमारियां क्या होंगी बढ़ती जाएंगी। आज ट्रीटमेंट इतनी सारी हो गई लेकिन बीमारियां उतनी ज्यादा बढ़ गई, बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट एस्केप द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिंगल थॉट। तो मन पर असर, शरीर पर असर, फिर एवरी थॉट विल हैव एन इफेक्ट ऑन, एवरी थॉट विल इफेक्ट ऑन, एवरी थॉट विल हैव एन इफेक्ट ऑन द पर्सन फॉर हुम इट वॉज क्रिएटेड। हम जो थॉट क्रिएट करेंगे वो एक SMS की तरह, एक WhatsApp की तरह चला गया, कई बार क्लिक होने के बाद लगता है लेकिन उतनी देर में तो वो चला गया, मतलब थॉट क्रिएट की तो वो चली गई। तो पहले यहां पर असर, फिर यहां पर असर, फिर रिश्ते पर असर, एंड चौथा वातावरण पर असर, माय एवरी थॉट। कलयुग कलयुग क्यों बन गया, क्योंकि जब हमने कहा स्ट्रेस नेचुरल, एंगर नेचुरल, हर्ट नेचुरल, तो हमने अपने आप को ऐसी थॉट्स क्रिएट करना अलाउ किया, तो फिर हमने कहा बीपी नेचुरल, डायबिटीज नेचुरल। हर साल हम एक नया फिगर दे देते हैं कि इस साल हम कहां पहुंचे, यहां। रिश्तों में फिर हमने कहा डिवोर्स होना नेचुरल, और वातावरण प्रकृति तो हमारी देखो रोज हमें आंसर देती है, हमने कहा नेचुरल। अब परमात्मा ने कहा ये कलयुग कब तक ऐसा चलेगा, आज सुबह थी, फिर दोपहर हुई, फिर अभी शाम हुई, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, फिर रात के बाद घोर रात्रि हो जाएगी, लेकिन फिर घोर रात्रि के बाद, घोर रात्रि के बाद सुबह होनी ही होनी है। परमात्मा ने आकर जो बहुत सुंदर बात सब बच्चों को बताई कि इस सृष्टि पर पहले सुबह थी, फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई, और अब ये सृष्टि की रात है। मतलब इस सृष्टि पर सत्ययुग था, त्रेतायुग था, द्वापर युग था, अब कलयुग है, और अब हम कहते हैं घोर कलयुग, कहते हैं ना घोर कलयुग। अब घोर कलयुग के बाद क्या आएगा, घोर कलयुग के बाद क्या आएगा, है ना? घोर कलयुग के बाद सत्युग आएगा। अब दो लाइनें हैं, बताना कौन सा राइट है, कि सत्युग आएगा या सत्युग हमें लाना है। सत्युग हमें लाना है, कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे? एवरी थॉट इज गोइंग टू अफेक्ट हाउ आई फील, हाउ द बॉडी इज, हाउ माई रिलेशनशिप इज, हाउ माई एनवायरमेंट इज। जब थॉट नकारात्मक थी तो फिर हमने कहा डिप्रेशन स्ट्रेस नेचुरल, बीमारियां नेचुरल, रिश्तों में टकराव नेचुरल, कलयुग नेचुरल। अब हर थॉट जब प्योर होगी तो आत्मा शक्तिशाली नेचुरल, शरीर हेल्दी नेचुरल, रिश्ते ब्यूटिफुल नेचुरल, एंड सृष्टि पर सत्युग नेचुरल। आपको पता है सत्युग में डॉक्टर नहीं होंगे, सत्युग में डॉक्टर नहीं होंगे, सत्युग में हॉस्पिटल नहीं होंगे, क्योंकि हर आत्मा इतनी प्योर होगी कि बीमारी होने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं। इसीलिए देवी देवताओं को क्या दिखाते हैं, कंचन काया मीनिंग परफेक्ट बॉडी। देवी देवताओं की मूर्ति अगर खंडित होती है तो स्थापन नहीं करते, क्योंकि देवी देवताओं की मूर्ति खंडित हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा प्योर तो शरीर बीमार हो ही नहीं सकता, और आत्मा इम्प्योर तो शरीर हेल्दी रहे वो हो नहीं सकता। कुछ 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 थोड़ा थोड़ा चलता जाता है उसका। तो जब हमें पता है कि गुस्से का हमारे ऊपर इतना इफेक्ट होता है, फिर हम गुस्सा क्यों करते हैं? हो जाता है, हम नहीं करते। थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम में वी वर डूइंग अ वर्कशॉप, तो आई जस्ट सेड नेक्स्ट 10 डेज एक्सपेरिमेंट दैट वी विल नॉट गेट एंग्री। तो सबने कहा हाँ नेक्स्ट 10 डेज हम अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, सिर्फ 10 दिन कि हमने गुस्सा नहीं करना। तो वापस सेंटर पर गए तो एक भाई ने फोन किया, सिस्टर बाकी सब लोग कर लेंगे लेकिन मेरी छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं गुस्सा करता नहीं, वो तो अपने आप आता है, तो मैंने क्या करना है, वो लोग तो ध्यान रख लेंगे, मुझे क्या करना है, मैं करता नहीं हूं, वो तो अपने आप आ जाता है। गुस्सा हम करते हैं या अपने आप आ जाता है? गुस्सा हम करते हैं या अपने आप आ जाता है? कोई भी चीज, हाँ जी, कोई भी चीज दो बार चार बार दस बार कर लो तो वो हमारी क्या बन जाती है? एक बार वो चीज हैबिट बन जाती है तो हमें रियलाइज नहीं होता कि ये हम कर रहे हैं, हम कहते हैं कि वो आ जाता है, लेकिन वो हम कल मॉर्निंग के सेशन में देखेंगे, हमने ही क्रिएट किया और हम ही इसको चेंज कर सकते हैं। यहां से वापस जाने के बाद थिंक एंड डिसाइड एंड देन आंसर। यहां से वापस जाने के बाद क्या गुस्से के बिना आपका काम चलेगा? थिंक, लुक एट एवरीथिंग अराउंड यू, डिसाइड एन आंसर। कोई आंसर नहीं। यहां से वापस जाने के बाद काम करना है, करवाना है, बच्चों को संभालना है, लोगों को चलाना है, सब कुछ करना है, बट विदाउट यूजिंग दिस डिप्लीटर। ये डिप्लीटर है जो हमारी एनर्जी को क्या करता है, वेस्ट, हमारी हेल्थ को अफेक्ट। क्या ये पॉसिबल है कि हम इसके बिना चलेंगे? पूरी तरह से या कभी कभी? क्योंकि आज डिसीजन लेंगे तो चौथे दिन तक खत्म करेंगे ना उस चीज को। थोड़ा थोड़ा चाहिए होगा या पूरी तरह से फिनिश करेंगे? व्हाट इज इजियर सेड देन डन, टू फिनिश इट और टू मैनेज देयर विदाउट इट? That is very easy. You take a decision whether your work will go on without it. To finish it is very easy. आप वो decision नहीं लो, वो decision छोड़ो। आप ये डिसीजन लो कि वापस जाने के बाद आपका काम चल जाएगा ना अच्छे से उसके बिना, बस दैट्स इनफ। खत्म कैसे करना है उसी के लिए तो आप यहां आए हो। जैसे ही माइंड को एक थॉट दिया, ये बहुत मुश्किल है, क्या हो जाएगा? एक एक थॉट इतनी ध्यान से करनी चाहिए। दुनिया में सिखाते हैं सोच कर बोलो, परमात्मा कहते हैं सोच कर सोचो, क्या सोच दिया? अगर आप किसी बच्चे को कहो ये उठाना, और साथ में आपने उसको एक मैसेज दिया, लेकिन है बहुत मुश्किल, पता नहीं तुमसे होगा कि नहीं होगा, तो वो बच्चा कर पाएगा उसको? तो जैसे ही आपने उसको कहा उसको उठाना, और अगर उसको लग भी रहा होगा कि थोड़ा मुश्किल है, आप इमीडिएटली सेकंड थॉट उसको क्या देंगे? बहुत इजी है, उठाओ, आई एम देयर विद यू, कम ऑन, वो कर लेगा। एक एक थॉट अपने आप को क्या देने हैं। तो अगर हमने अपने मन को कहा डिफिकल्ट, पॉसिबल नहीं, अगर हम डिफिकल्ट कहें ना, तो आज दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक कप चाय भी नहीं छोड़ सकते, कहते बहुत डिफिकल्ट। दिस इज साइन दैट वी आर एक्सट्रीमली वीक एंड वी डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग अबाउट इट। जी मेरा तो चाय के बिना चलता ही नहीं, ये भी एक जीवन जीने का तरीका है। एंड विच मीन्स कि मेरा मन हर चीज का गुलाम, ये भी एक जीवन जीने का तरीका है। और फिर हम गुलाम ही रहेंगे, गुलाम ही जिएंगे, आत्मा शरीर छोड़ेगी और वो ही संस्कार आगे लेकर जाएंगे। और एक है चाय ही छोड़नी है ना, आदत है, दो दिन सर दर्द होएगा, तीसरे दिन ठीक हो जाएगा, विक्ट्री। अपने आप से पूछें, गुलामी की जीवन जीनी है या मालिक बनना है अपने ऊपर? अगर हम गुलाम बनते जाते हैं तो हम खाने पीने की चीजों के गुलाम, लोगों के व्यवहार के गुलाम, उसने ऐसा कहा तो मुझे बुरा तो लगना ही था, उसने ऐसा किया तो मुझे गुस्सा तो आना ही था, तो मेरे मन का रिमोट कंट्रोल कहाँ? मेरा मन उनका गुलाम। इफ आई से उन्होंने ऐसा किया तो मुझे बुरा तो लगना ही था, तो विच मीन्स माई माइंड इज कंट्रोल्ड बाय, तो फिर हम खाने पीने चीजों के गुलाम, लोगों के गुलाम, अपने संस्कारों के गुलाम, ये भी एक जीवन जीने का तरीका है। फिर हम कहेंगे प्लैनेट्स की पोजीशन, उसके हम गुलाम, फिर मौसम, उसके हम गुलाम, क्योंकि गुलाम बनने लगे तो हर चीज के गुलाम, और स्वतंत्र होने लगे। कलयुग में गुलामी का भी संस्कार है। अब जब इंडिया गुलाम था तो मेजॉरिटी लोग गुलामी की जीवन ही जी रहे थे, और उन्होंने सोचा यही नॉर्मल है और ऐसा ही चलेगा। कुछ लोग थे जिन्होंने कहा हम ऐसी जीवन नहीं जिएंगे, हम लड़ेंगे मरेंगे लेकिन स्वतंत्र होकर रहेंगे। वो कुछ लोगों ने मेहनत की, फल पूरे देश को मिला। आज इस सृष्टि पर कुछ लोग मेहनत करेंगे, फल पूरी दुनिया को मिलेगा, क्योंकि कलयुग से सत्ययुग पूरी दुनिया बन जाएगी। वो कुछ लोग हम हैं, इसलिए हम यहां आए हैं आज। बाकी गुलामी की जीवन जीना तो इट्स वेरी इजी, क्या करें, गुलाम है, जी रहे हैं, स्लेव, स्लेव टू सो मेनी थिंग्स। सो द फर्स्ट थिंग टूडे, फॉर एनीथिंग, डोंट से टू योर माइंड वेरी डिफिकल्ट, कांट डू, बिना ट्राई किए। साइंस मतलब बिना एक्सपेरिमेंट किए रिजल्ट नहीं देना है ना। एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, ट्राई करने के बाद, अटेंशन देने के बाद फिर भी अगर आपको लगेगा कि नहीं जाता, उस दिन कहना कि गुस्सा नहीं छूटता, बट वो ऐसी कोई आत्मा ही नहीं है जिससे नहीं होगा। इट इज दैट इजी, क्योंकि परमात्मा आया है इस सृष्टि को कलयुग से सतयुग, इसीलिए कैटरपिलर से बटरफ्लाई। सत्युग में जो होंगे आत्माएं वो कैसे होंगे? प्योर, डिवाइन। शरीर कैसे होंगे? हेल्दी। हम वो आत्माएं हैं। जब हम यहां से वापस जाएंगे, हम कलयुग में ही वापस जाएंगे, दुनिया कलयुग होगी, लेकिन हम कौन सी कॉन्शियसनेस से वापस जाएंगे? हम कौन सी कॉन्शियसनेस से वापस जाएंगे? यस, बिकॉज सत्युग हैज टू स्टार्ट हियर। जिस क्षण किसी ने गलती की, मैंने गुस्सा किया, इट इज अ कलयुगी कॉन्शियसनेस। जिस क्षण किसी ने गलती की, मैंने एक्सेप्ट किया, समझा, उसको समझाया, इट इज अ सत्युगी कॉन्शियसनेस। इट हैज टू स्टार्ट हियर, इट हैज टू स्टार्ट हियर, एंड वी आर रेडी टू वर्क बिकॉज इट्स वेरी इजी। गुस्सा हमें तब आता है जब लोग और सिचुएशंस हमारे अनुसार नहीं होते। इज इट पॉसिबल दैट पीपल एंड सिचुएशंस हमारे अनुसार होंगे? इज इट पॉसिबल? नेवर। इज इट पॉसिबल? अब इस माइंड की प्रोग्रामिंग देखें। ये एक प्रोग्रामिंग है, कैसी कर दी है हमने। कहा जब लोग और परिस्थितियां मेरे अनुसार नहीं होंगी तो मुझे गुस्सा आता है। सेकेंड लाइन हमने कहा, लेकिन लोग और परिस्थितियां मेरे अनुसार हों वो पॉसिबल भी नहीं है। तो फिर हमने अपने मन को क्या कहा? खुश रहना पॉसिबल? अब इस प्रोग्रामिंग को चेंज करते हैं। जब लोग और सिचुएशंस मेरे अनुसार हो, आई एम हैप्पी। जब लोग और सिचुएशंस मेरे अनुसार नहीं होंगी, एक बच्चे को सिखाना है, एक बच्चे को हमने अभी ये सिखा दिया है इस बच्चे को कि जब लोग तुम्हारे अनुसार हो, वेरी गुड, लेकिन जब लोग तुम्हारे अनुसार नहीं हो तो गुस्सा करना नेचुरल है क्योंकि सब लोग करते हैं। अब इस बच्चे को हम कुछ और सिखाने वाले हैं। जब लोग एंड सिचुएशंस मेरे अनुसार हो, आई एम हैप्पी। व्हेन पीपल एंड सिचुएशंस आर नॉट द वे आई वांट देम टू बी, देन क्या सिखाना है बच्चे को? क्या सिखाना है बच्चे को? देन ऑल्सो बी हैप्पी। आपको लगता है ये मन कहना मानेगा? ये मन हमारा है। इस पूरी सृष्टि पर एक ही मन है जो आपका कहना मानेगा, लेकिन हम इस एक मन के छोड़कर बाकी सारा दिन सबके मन को कहते रहते हैं मेरा कहना मानो। और जो एक है अपना, जो हमारा कहना मानेगा, उसको हम कहते हैं ये मन तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो इम्पॉसिबल को करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पॉसिबल है उसके लिए कहते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल। अपना मन है, अपना बच्चा है, जैसा चलाएंगे वैसा चलेगा, जैसा सिखाएंगे वैसा बनेगा। उस पर गिव अप नहीं कर देना, ये तो मेरा कहना नहीं मानता। इस चार दिन में एक्सपेरिमेंट, यहां भी हर चीज हमारे अनुसार नहीं होगी। आप अपनी बिल्डिंग से बाहर आएंगे, आपको इमीडिएटली बस खड़ी हुई वहां नहीं मिलेगी। चॉइस है, कैसे है? सेशन का टाइम है तो बस तो होनी चाहिए थी ना रेडी वहां पे। एक एक थॉट मेरी एनर्जी को क्या कर रहा है, इमीडिएटली उसको क्या करेंगे, आ जाएगी स्टॉप। तो वो एक थॉट पे ही चुप हो जाएगा। अगर उसको सिखाया, अगर उसको नहीं, तो वो एक थॉट की जगह पांच थॉट क्रिएट कर देगा उस टाइम। उतना करते करते बस तो आ जाएगी, हम हॉल में भी पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारा मन कैसा होगा? ये सारा दिन होता है, ये सारा दिन होता है। सो एवरीथिंग दैट वी डू वी विल एक्सपेरिमेंट हियर इन दीज फोर डेज। कि व्हेन पीपल आर नॉट द वे आई वांट देम टू बी, when situations are not the way I want them to be, can I teach my mind to be the way I want it to be? मौसम मेरे अनुसार नहीं होगा, लेकिन उस मौसम को देखकर मुझे कैसा फील करना है, ये मेरे अनुसार हो सकता है। लोग मेरे अनुसार नहीं होंगे, लेकिन उनको देखकर मुझे क्या सोचना है, ये मेरे अनुसार हो सकता है। तो क्या मेरे अनुसार हो सकता है और क्या मेरे अनुसार नहीं हो सकता? क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है? क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में है ये, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है वो. डोंट यू सी दैट टुडे वी हैव रिवर्स्ड द इक्वेशन. इसको हमने क्या कह दिया, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. और इनको हम सारा दिन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे अनुसार चलो. ऑपोजिट. कलयुग में पहुंचते पहुंचते एंड तक हम सब कुछ ऑपोजिट करने लग जाते हैं. जैसे ही इक्वेशन को थोड़ा सा रिवर्स करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ विल चेंज. सो नाउ वी टेल आवर माइंड टुडे, क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में है, मेरा मन, मेरे वर्ड्स, मेरा बिहेवियर. That's the only thing in my control. क्या मेरे control में नहीं है situations and how people behave. अगर मुझे situation को भी संभालना है तो situation को संभालने से पहले मुझे किसको संभालना होगा, अपने आप को. Responsibility में सबसे पहला number किसका, अपनी responsibility की list में पहला number किसका, self. आज हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट में नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्फ. क्योंकि ये ठीक तो सब कुछ ठीक. इट्स लाइक द सीड. हमारे मन की स्थिति हमारे जीवन रूपी वृक्ष का बीज है. अगर बीज हेल्दी तो पूरा वृक्ष क्या हो जाएगा, हेल्दी. अगर बीज हेल्दी नहीं और हम एक एक पत्ते को धोने की कोशिश करते हैं, ये भी खुश हो जाए, ये भी खुश हो जाए, ये भी ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो जाए, फिर हम कहते हैं कितना भी कोशिश करो लोग खुश ही नहीं होते. आजकल लोग खुश होते हैं हमारे से, थोड़ी देर होते हैं, थोड़ी देर में फिर नाराज हो जाते हैं. सो वी कैन नॉट कीप टेकिंग केयर ऑफ प्लीजिंग पीपल. वी हैव टू ओनली टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ. अपना ध्यान रखा, बाकी चीजें अपने आप, अपने आप. अब आप सोचो, एक डॉक्टर जब अपने जीवन में ये करना शुरू कर दे तो इसका बेनिफिट कितने लोगों को मिलने वाला है, कितने लोगों को मिलने वाला है ना. जो आप करेंगे, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, वो आपकी वाइब्रेशन है जो सबको रेडिएट करेगी. जैसे कोई डॉक्टर है जो नॉनवेज खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो वो अपने पेशेंट को भी क्या बोलेंगे, हाँ रोज एक लेना चाहिए, अच्छा है हार्ट के लिए, है ना. लेकिन जो नहीं लेते वो अपने पेशेंट को क्या बोलेंगे. सो डॉक्टर का जो बिलीफ सिस्टम है वो अनेकों का बिलीफ सिस्टम बनता है समाज के अंदर. तो जो डॉक्टर कहेगा कि गुस्सा तो नेचुरल है, आता ही है, तो वो पेशेंट को भी यही बिलीफ सिस्टम रेडिएट करेगा. लेकिन जब डॉक्टर अपने ऊपर वर्क करके रियलाइज करेगा कि ये तो बीमारियों का कारण है, इसको हटाना है, तो अपने पेशेंट को भी वो रेडिएट करेगा. तो सोचो कि आपके पेशेंट की जो बीमारी है वो ऊपर ऊपर से नहीं, जड़ से निकलकर ठीक हो जाए. आज कोई भी बीमारी लेकर आपके पास कोई आता है तो मेजोरिटी बीमारियों को हम ठीक करते हैं और हम कहते हैं कुछ साल के बाद ये बीमारी क्या होती है, फिर आ जाती है, रिलैप्स. क्यों रिलैप्स होता है, रिलैप्स क्यों होता है, रिलैप्स क्यों होता है. बाईपास किया, कुछ साल बाद फिर. कैंसर हुआ, ठीक हुआ, कुछ साल बाद फिर. ये रिलैप्स क्यों होता है चीजों का, क्योंकि बीमारी यहां है. यहां फर्स्ट स्टेज बीमारी, यहां सेकेंड स्टेज. डॉक्टर ने क्या किया, दवाई ने क्या किया, सेकेंड स्टेज से बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर दिया. फर्स्ट स्टेज के बारे में डॉक्टर ने भी नहीं बताया, पेशेंट को भी नहीं पता. तो पेशेंट का सोचने का तरीका, रिश्ते, व्यवहार सेम, तो थोड़े साल के बाद फर्स्ट स्टेज से वो वापस थे. अब अगर डॉक्टर पेशेंट को बताए कि गुस्सा से आपकी ये बीमारी वापस आ सकती है, पुरानी बातें जो आपने पकड़ कर रखी है अपने अंदर रिलीज करो, पास्ट का रिजेंटमेंट, पास्ट का हर्ट बीमारी को फिर से लेकर आता है. सोचो अगर आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन में ये लिखो, ये दवा दिन में दो बार खानी है, ये खाना है, सुबह उठकर ये करना है, और लास्ट लाइन लिख दो सारा दिन शांत और खुश रहना है, लिख सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, ब्रैकेट में, एंगर इज नॉट अलाउड फॉर दिस इलनेस। आपने लिखा तो उन्होंने करना शुरू कर देना है, और अगर उन्होंने करना शुरू कर दिया वो आपके पास वापस नहीं आएंगे। जड़ से निकालना है बीमारी को, दैट इज अ हीलर ना। एक हीलर मतलब जिसने बीमारी को जड़ से निकाल दिया और व्यक्ति आया था दर्द में, उसको सुखी करके वापस भेजा है। आप डॉक्टर हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं डॉक्टर नहीं, हीलर बनना है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ हीलर? एक डॉक्टर, एक हीलर, व्हाट विल बी द डिफरेंस? हीलर इज अ परमानेंट क्योर। डॉक्टर एंड हीलर क्या फर्क होगा? डॉक्टर मीन्स एक्सीलेंट ट्रीटमेंट, बेस्ट मेडिसिन, एक्यूरेट सर्जरी, ठीक हो गए। हीलर मीन्स दुखी और दर्द में आए थे, खुश होकर वापस गए, पूरी तरह से मन हील, शरीर हील। और हीलिंग कैन बिगिन बाय मीटिंग द डॉक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर 2 मिनट्स। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनसे हम मिलते हैं, 2 मिनट ही मिले, अभी तो दवाई खाई भी नहीं है, अभी तो इलाज शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन मिलने के बाद बाहर आके इनसे मिलके ही मजा आ गया। कहते हैं ना, इनसे मिलके आधी बीमारी तो क्या हो गई, मेरा दर्द तो ठीक हो गया। वो कौन से हीलर होंगे जिनकी अपनी वाइब्रेशन कैसी होगी? इतनी प्योर होगी, इतनी खुशी खुशी वाली होगी कि सामने वाला दर्द में आएगा लेकिन उसको हीलर से क्या मिल जाएगा? इतनी प्यार और खुशी वाली वाइब्रेशन मिलेगी, उसका यहां का दर्द कम हो जाएगा। जब उसका यहां का दर्द कम होगा, उसको यहां का दर्द कम लगने लग जाएगा उसी टाइम। दवा तो वो बाद में खाएगा, लेकिन जिस डॉक्टर के पास अगर हम गए, अगर वो हमसे भी ज्यादा दुखी है, हो सकता है ना कभी कभी कि वो हमसे भी ज्यादा दुखी है, हम परेशान है लेकिन उसकी परेशानी का साइज हमारे से भी ज्यादा है, तो फिर हम गए थे इतना दर्द लेके, वापस थोड़ा सा और दर्द लेकर आएंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो डॉक्टर को भी पेशेंट का दर्द मिलता है सारा दिन। मेडिकल प्रोफेशन इज अ वेरी हाई रिस्क प्रोफेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज द होल डे योर इंटरेक्शन इज ओनली विद पीपल इन पेन, एंड पेन नॉट फिजिकल पेन, इमोशनल पेन। हर एक पेशेंट जो आपके साथ आ रहा है वो दुखी है, उसके साथ जो 2 लोग आ रहे हैं वो भी दुखी है। तो एक्चुअली एवरी 5-10 मिनट्स आप यहां बैठे हैं, आपके अक्रॉस 2-3 लोग बैठे हैं, वो दर्द में आ रहे हैं। एंड जब 2 लोग मिलते हैं, देर इज एन एनर्जी एक्सचेंज। क्यों आज डॉक्टर्स फील करते हैं कि हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है, कई बार बर्नआउट तक भी पहुंच जाते हैं? क्योंकि वो सारा दिन नेगेटिव एनर्जी को प्रोन है। एक रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं, एक मॉल में जाते हैं, लोग खुश खुश जाते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के पास जब लोग आते हैं, लोग दुखी आते हैं। बीमार आना और दुखी आना डिफरेंट, दुखी आते हैं, सिर्फ बीमार नहीं आते, वो दुखी आते हैं। तो जब हम यहां बैठे हैं सारा दिन, हमारे पास एनर्जी कौन सी आएगी? दुखी वाली आएगी। अगर हमने अपने आप को नहीं बचाया, अगर हमने अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट किया, देन वी आर कंज्यूमिंग दैट पेन। जैसे आप किसी को हाथ नहीं लगाएंगे विदाउट वेयरिंग ग्लव्स, और अगर लगा भी दिया तो इमीडिएटली क्या करेंगे? इमीडिएटली सैनिटाइजर यूज करेंगे, नहीं तो उनकी इन्फेक्शन हमारी इन्फेक्शन हो जाएगी। इसी तरह सारा दिन दर्द में कोई आ रहा है, हमारा हाथ उनके शरीर को टच करता है, हमारा मन उनके मन के साथ संपर्क में आता है। हमने अपने मन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ किया? अगर नहीं किया, देन वी आर कंज्यूमिंग दैट वाइब्रेशन। अब स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन हमें क्या सिखाएगा कि हमारा एनर्जी लेवल इतना हाई हो, हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जो हमें प्रोटेक्ट करे, कि उनकी नेगेटिविटी हम पर नहीं, हमारी प्योरिटी उन पर असर डालेगी, क्योंकि दोनों में से एक दूसरे पर हावी होगा। एक की एनर्जी का प्रभाव दूसरे पर होगा, एक है पूरा दिन इतने लोगों को मिलकर शाम तक हम फील करें कि हम थक गए, या दूसरा ऑप्शन है हमारे से जो मिले वो फील करे कि वो खुश हो गए। दो ऑप्शन है, डिपेंड्स ऑन हमारी एनर्जी फील्ड कैसी। तो हम हीलर हैं। हीलर मींस, डॉक्टर मींस दवा ट्रीटमेंट, हीलर मींस केयर लव कंपैशन। इज इट पॉसिबल टू हैव अ डॉक्टर विदाउट केयर एंड कंपैशन? इट्स पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ हीलर विदाउट केयर एंड कंपैशन। हीलिंग करना और ट्रीटमेंट देना दो बिल्कुल अलग चीज है। तो हमें सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं देनी, हमें ट्रीटमेंट के साथ हीलिंग करनी है। क्यों हीलिंग करनी है? क्योंकि दूसरों की हीलिंग करने में सबसे पहला फायदा किसका होने वाला है? सबसे पहला फायदा मेरा होने वाला है, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग दैट प्योर एनर्जी। एंड वो प्योर एनर्जी का सबसे पहला बेनिफिट किसको होने वाला है? मुझे होने वाला है। तो हीलिंग उनकी, लेकिन उनकी हीलिंग से पहले हीलिंग मेरी। दैट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग अ हीलर। तो कलयुग में डॉक्टर कॉन्शियसनेस, लेकिन सत्युग कॉन्शियसनेस हमें क्या क्रिएट करेगी? हीलर। अ हीलर कैन नॉट बी स्ट्रेस्ड, अ हीलर कैन नॉट बी एंग्री। हीलर विल बी लाइक एन एंजल। फरिश्ते कैसे होते हैं? आपको तो दुनिया वैसे ही टाइटल देती है कि ये हमारे जीवन में फरिश्ता बनकर आए, ये हमारे जीवन में भगवान बनकर आए। पूरे समाज में किसी और को ऐसे टाइटल नहीं मिलते हैं। तो जो टाइटल मिले हैं फिर वैसी वाली क्वालिफिकेशन भी है ना। फरिश्ता गुस्सा करता हुआ थोड़ी अच्छा लगेगा। फरिश्ता कैसा अच्छा लगता है? फरिश्ता कैसे होगा सारा दिन? विजुअलाइज करें, एंजल कैसा होता है? मुस्कुराता। और एंजल की सबसे मेन क्वालिफिकेशन लाइट, इसीलिए उनको उड़ता हुआ दिखाते हैं। तो वो फिजिकली नहीं उड़ रहे कोई, एंजल उड़ता हुआ मतलब जो मन से कैसा है, लाइट, फ्लाइंग एंड टचिंग एवरीबडी एंड हीलिंग एवरीबडी। कि दुखी कोई आया और मुस्कुराकर वापस जा रहा है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन उनको हील करती है। दवा बाद में इलाज करेगी, पहले हमारी वाइब्रेशन उनको हील करती है। तो हम फरिश्ते बनने के लिए रेडी? हम फरिश्ते बनने के लिए रेडी, राइट? तो बटरफ्लाई तो बहुत छोटा वर्ड है, हम क्या बनने वाले हैं? हम फरिश्ते बनने के लिए परमात्मा के घर आए हैं। हम कलयुग से सत्योगी दिव्य आत्मा बनने के लिए यहाँ पर आए हैं, और ये हमारे श्रेष्ठ कर्म है जो हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इस पूरे चार दिन का पूरा पूरा फायदा उठाना है। रोज सुबह अमृत वेले से, आपने शेड्यूल देखा सबने अच्छे से? शेड्यूल देखा कितने बजे दिन शुरू होता है? कितने बजे दिन शुरू होता है शेड्यूल में? डॉक्टर्स की जो सबसे प्यारी विशेषता है वो है सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्किंग। यहां पर हर हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस होती है, हर हफ्ते एक अलग प्रोफेशन आता है, मतलब ऐसे इकट्ठे होते हैं। तो जैसे अभी सब हीलर्स, फिर होगा सब ज्यूरिस्ट, फिर होंगे सब एडमिनिस्ट्रेटर्स, फिर ऐसे अलग 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 अलग। चार बजे का जो मॉर्निंग का अमृत वेले का मेडिटेशन होता है वो डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में फुल होता है, बाकी में हुए या नहीं हुए। दैट इज योर स्पेशलिटी। क्योंकि आप जो करेंगे उसको कैसे करते हैं? क्योंकि वो संस्कार है ना, संस्कार इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि हम जो करेंगे फिर उसको उतनी सिंसियरिटी से करते हैं। तो सुबह चार बजे का समय, इट्स अमृत वेला उसको कहते हैं, प्योर डिवाइन टाइम। जब वाइब्रेशन भी कैसी है, बहुत प्योर और सात्विक, परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर भरने का सबसे इजीएस्ट समय। जैसे अगर हाईवे पे जाना है तो कौन से टाइम पर जाते हैं? जब ट्रैफिक कम है। इंटरनेट पर भी अगर कुछ डाउनलोड करना है तो कौन से टाइम पर करना चाहिए? क्योंकि फटाफट डाउनलोड हो जाएगा, बाकी दिन में करेंगे तो वो गोल गोल घूमेगा। ऐसे ही उसकी एनर्जी को डाउनलोड करना है तो कौन से टाइम पर करना चाहिए? जब बाकी सब लोग सोए हुए हैं। तो हम लॉग इन करेंगे सुबह सुबह और उसका सारा डेटा क्या कर लेंगे? डाउनलोड कर लेंगे, बाकी सब लोग उस समय सोए हुए हैं। तो पूरी दिनचर्या को अच्छे से देखें, हर चीज का पूरा पूरा लाभ उठाएं। हमें ये चार दिन मिले हैं सात्विक वातावरण, सात्विक संग, सात्विक भोजन। बाहर जब हम मेडिकल डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस करते हैं तो भोजन कैसा होता है? नहीं, हम उसको कोई वर्ड नहीं देंगे, लेकिन यहां का भोजन अलग। भोजन का मन पर असर पड़ता है, तो सात्विक भोजन। और सात्विक भोजन मतलब वो नहीं सिर्फ जो वेजिटेरियन है या बिना प्याज लहसुन के है, सात्विक भोजन मतलब जो मेडिटेशन की स्थिति में बनाया हुआ भोजन, जो खाते ही हमारे मन के ऊपर और शरीर के ऊपर उसका असर होगा। परमात्मा का ज्ञान, ये सारी चीजें हमें इकट्ठी मिलती हैं, तो इसका पूरा पूरा हमें लाभ उठाना है। 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। जो बीच में गीत बजता है ऐसे, इसको ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, कि सारा दिन में 5-6 बार ऐसे गीत बजेगा। दिस मीन्स स्टॉप, पॉज फॉर 2 मिनट्स, चेक व्हाट इज गोइंग ऑन, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स, चेकिंग, चेंजिंग, कनेक्टिंग टू हिम अगेन। तो सुबह से आज शाम को भी चारों तरफ जाएं, हर बिल्डिंग में जहां आप ठहरे हैं वहां एक मेडिटेशन कमरा है, और यहां जो मेन सामने है वो मेडिटेशन कमरा है। जब भी समय मिले उसमें जाकर बैठे, एक अलग वाइब्रेशन है हर मेडिटेशन रूम में भी। जीवन की कोई भी बात है, कोई पास्ट की बात है, कोई फ्यूचर की एंजाइटी है, कोई गिल्ट है, कोई बोझ है, परमात्मा से बात करें, हल्का होकर जाए। वो वाइब्रेशन आपको परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्ट करके उससे आंसर लेने में मदद करेगी। सो लेट्स कीप दिस फोर डेज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, जहां हर चीज जो हम कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ हमें सत्युग की तरफ लेकर जा रहा है, हमें प्योरिटी और हेल्थ की तरफ लेकर जा रहा है। हर सेशन में हम समय पर आए, बीच में आते हैं तो माइंड को अंडरस्टैंड ही नहीं होगा क्या हो रहा है। तो हर चीज का पूरा पूरा लाभ उठाएं और कल सुबह के अमृत वेले सेशन में जरूर आइएगा। इट्स अ स्पेशल अपॉइंटमेंट विद हिम। ओके, थैंक यू सो मच। ओम शांति।
सफलता उनको मिलती है कि जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से केवल काम नहीं होता लेकिन हौसलों से उड़ान होती है। शिवानी बहन ने हमें पंखों में हौसला भर दिया और कैटरपिलर से बटरफ्लाई की उड़ान, और चार दिन का हमको होमवर्क भी मिला। और शिवानी बहन हमको अब आने वाले दिनों में भी इस प्रकार से एनर्जेटिक थॉट्स भरती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी बहन। कुछ लोग बहुत प्यारे होते हैं, जिंदगी बहुत प्यारी होती है, लेकिन कुछ लोग जिंदगी से भी ज्यादा प्यारे होते हैं, जो दर्द को राहत में बदल देते हैं। वो कौन है? कौन है? जोर से नहीं बोल रहे। आप सभी हैं, हम डॉक्टर्स हैं, तो इसीलिए अपने लिए एक बार जोरदार तालियां कि आप सभी ने यहाँ वो हौसला रखा है और आप यहाँ तक पहुंचे हैं, और सब मिलकर इस एनर्जी को बाकी के डॉक्टर्स तक भी हम यहाँ से जाने के बाद पहुंचाएंगे।